हम सत्यार्थ प्रकाश पर चर्चा कर रहे थे। आज चौथा पाठ है, चैप्टर 3 का विषय एजुकेशन है। हमने पिछले बार चर्चा की प्राणायामों के बारे में। चार तरह के प्राणायाम होते हैं। एक एक्सटर्नल, जब आप सांसों को बाहर निकाल करके बाहर ही रोकने की कोशिश करते हैं जहां तक आपको सुकून मिले, अच्छा लगे। दूसरा है इंटरनल, जब सांसों को अंदर लेकर अंदर ही होल्ड करते हैं, अंदर ही रोकने की कोशिश करते हैं जितनी देर तक हम कर सकें। तीसरा है स्तंभ वृत्ति, कि सांस जहां पर है, जब आपने सोचा कि मुझे सांसों को रोकना है, वो आ रहा है या जा रहा है, इट इज आउटकमिंग आउटगोइंग और इनकमिंग, जहां भी है वहीं पर सांस को रोकें, ये स्तंभ वृत्ति है। चौथी मुश्किल है सांसों की जो नेचुरल फ्लो है, अगर सांस बाहर जा रहे हैं उनको रोक करके अंदर की ओर लेना, अगर सांस नेचुरली अंदर की ओर जा रहे हैं उनको रोक करके बाहर की ओर खींचना, ये बाह्याभ्यंतर वृत्ति है। ये चार तरह के बेसिक जो मूलभूत प्राणायाम है, जिनके आधार पर हम हजारों तरह के अलग अलग तरह के प्राणायाम बनाते हैं या देखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, पर ये चार मूल होते हैं। प्राणायामों का लाभ जो है, जब हम ये प्राणायाम की प्रक्रिया को करते हैं, उससे हमारे अंदर की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो ज्यादा मजबूत होती है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, हर चीज ज्यादा ज्यादा जरूरत पहले से ज्यादा शार्प और ज्यादा मजबूत होती है। जिन लोगों को कॉरेज कम है, हिम्मत कम है, उनके हिम्मत का लेवल बढ़ता है। ये नहीं कि हमें प्राणायाम से सिर्फ फिजिकली लाभ होता है। इंद्रियों को कंट्रोल करने में जिनको प्रॉब्लम है, प्राणायाम से ज्यादा आसान होता है कंट्रोल करना। जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है, मतलब जहां जिनका कंसंट्रेशन कम होता है पढ़ने में, मन बहुत भटकता है, उनको अपने माइंड को कंट्रोल करने में आसान होता है। ये सारी चीजें जो बहुत, ये प्राणायाम का रिजल्ट नहीं है, ये प्राणायाम के साइड इफेक्ट्स हैं। उसका रिजल्ट तो ये है कि आप अपने आप को पूरी तरह रेगुलेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सांसों को जितने लंबे देर तक आप रोक सकते हैं उतने देर तक आप, जब आप योग साधना में जाएंगे वो आपको जरूरत होगी। पर क्योंकि प्राणायाम एक ऐसा चीज है कि जब आप करते जाते हैं उसके साइड इफेक्ट के रूप में आपको बहुत सारे फायदे होते रहते हैं। अगला है संध्या उपासना। संध्या उपासना का अर्थ होता है, आजकल बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है, ये संध्या उपासना। संध्या का अर्थ होता है ट्विलाइट, जब दो चीजें, दो टाइम एक जगह मिलते हैं, एक टाइम पर जो दो अलग अलग चीजें मिलते हैं, जैसे सुबह को दिन और रात मिलते हैं या शाम को दिन और रात मिलते हैं, इसे कहते हैं संधि का, जब दो चीजें जुड़ते हैं। इन दोनों समय पर जो जो ईश्वर की भक्ति की जाती है उसे संध्या कहते हैं। प्राचीन काल में, जिसको आजकल हम हिंदू धर्म कहते हैं, जो पहले सनातन धर्म या वैदिक धर्म से जाना जाता था, जब यह मूर्ति पूजा का कोई कंसेप्ट हिंदू धर्म में था ही नहीं, हजारों सालों तक, हजार हजार सालों तक आपको किसी वेद में, ब्राह्मणों में, आरण्यक में, उपनिषद में, धर्मशास्त्र में, महाभारत में, रामायण में कोई एक भी रेफरेंस नहीं मिलेगा कि उन दिनों जैसे आजकल मंदिर जाते हैं या घर में कोई फोटो रखकर मूर्ति रख के पूजते हैं, ऐसा कोई, ये हिंदू धर्म में ये हजार हजार सालों तक ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। तो फिर ईश्वर से अपने आप को जोड़ने की तरीका क्या थी? एक तो ये जो यज्ञ हम रिचुअल्स करते हैं इसके बारे में समझेंगे, दूसरी थी संध्या। संध्या का अर्थ होता है, एक तो आप जब मर्जी प्रार्थना कर सकते हैं, पर संध्या एक रिचुअल्स के रूप में यूज होता था। संधि के समय में सुबह और शाम, और उसकी अपनी एक प्रोसेस होती थी। वो प्रोसेस क्या थी? संध्या इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्म यज्ञ। उसमें जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, यज्ञ करे, हवन करे, पूजा पाठ करे, तो आप आचमन करते हैं। जैसे आपको कहते हैं भाई राइट हैंड में पानी लो और उसको स्वाहा के साथ करो, उसका क्या मतलब है? आचमन करते हैं और अंग स्पर्श करते हैं। कहते कोई भी अच्छा काम करने से पहले वह रिचुअल्स करने, रिचुअल्स का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है अगर आप उसको मानते नहीं। उसकी जो सिंबोलिज्म है, जो उसकी प्रतीकात्मकता है, उसको अगर हम नहीं समझते तो वो बड़ा नॉनसेंस लगेगा, बड़ा यूजलेस लगेगा। क्योंकि पूरी सारी की सारी रिचुअल्स जो है दुनिया के किसी भी धर्म में जो रिचुअल्स होते हैं वो सिंबोलिज्म पर बेस्ड होते हैं, वो कि खास कुछ बातें कहना चाहते हैं। इसी तरह जब हम आचमन या अंग स्पर्श करते हैं पानियों से, वो इसीलिए किया जाता है कि कोई भी अच्छा काम करने से, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने से पहले हमें ये फीलिंग होना चाहिए कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र, आई एम प्योर। उस प्योरिटी की भावना जब तक नहीं होगा, वो प्योर ईश्वर को, शुद्ध ईश्वर को पाना मुश्किल है। हम गंदी सोच के साथ, गंदी भावना के साथ, झूठ, फरेब, लालच वगैरह वगैरह चीजों के साथ हम ईश्वर को अगर प्रार्थना करें, उसका रिजल्ट वैसा ही होगा जैसे आप घर में कितने भी अच्छा अच्छा खाना बनाएं या होटल से या रेस्टोरेंट से मंगाएं, पर आपका बर्तन अगर बहुत गंदा है, आपकी प्लेट अगर बहुत गंदा है, उसमें गोबर है, मिट्टी है, और ऐसी प्लेट पर आप बढ़िया से बढ़िया खाना डालें, तो उस खाने का कोई मतलब नहीं होता, उल्टा वो ज्यादा नुकसान करता है। इसी तरह जब हमारा मन गंदा हो, मतलब मन अगर बुराइयों से भरा हो, और हम धार्मिक कृत्य करें, पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति वगैरह, तो वो एक तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, दूसरा नुकसान होता है कि हम हिपोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। मतलब अंदर तो मेरा कुछ नहीं बदल रहा है, ना मैं अच्छा बन रहा हूं, बस पब्लिक को दिखाने के लिए करता हूं, तो ये हिपोक्रेसी होती है। और हिपोक्रेट लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो मन में वो शुद्धता का, प्योरिटी आनी जरूरी है, क्योंकि ईश्वर हमेशा, क्योंकि खुद शुद्ध है, तो जो अच्छे लोग हैं, जो दिल के साफ हैं, उनको पसंद करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, कोई भी जब हम रिचुअल्स करते हैं, उससे पहले जो आचमन और अंग स्पर्श करते हैं, इस भावना के साथ कि जो मैं पानी अंदर ले रहा हूं, मैं अपने मन को पवित्र कर रहा हूं अंदर को, और जो अंगों के अलग अलग सेंसेस को जो मैं पानी से छूता हूं, इसी भावना के साथ कि मेरे इंद्रियां शुद्ध होते हैं। ध्यान रखिए, पानी, हवा, आग, ये सब चीजें जो होती है, दे आर द टूल्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये शुद्धता के साधन है। इन्हीं को हम अपने रियल लाइफ में भी कोई चीज साफ करने के लिए इन्हीं को यूज करते हैं। पानी है, हवा है, आग है। पानी को एक खास भावना के साथ अंदर जब हम लेते हैं, आचमन करते हैं कि मेरा अंदर उस शुद्ध हो, और जब शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को छूते हैं कि मेरा शरीर शुद्ध हो, तो आप हंसेंगे कि क्या पानी पी लेने से, खास मंत्र पढ़ के और कान नाक छू देने से मैं पवित्र हो जाऊंगा? हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो हमारे एक्शन से नहीं होता है, वो हमारे माइंडसेट से होता है। अगर मैं मानता हूं कि चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, किसी को मारना बुरी बात, ऐसा अगर मेरा कन्विक्शन है, अगर ऐसा मेरा माइंडसेट है, तो मैं किसी भी हालत में चोरी कर ही नहीं सकता। भूखा रहूं तो भी नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं। मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। अगर मेरा माइंडसेट है कोई फर्क नहीं पड़ता चोरी करने में, झूठ बोलने में वगैरह वगैरह, तो मुझे चोरी करने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए, और मेरे पास सब कुछ होने पर भी मैं चोरी करूंगा। और आप देखते हैं दुनिया में ज्यादातर जो चोर होते हैं वो बड़े पैसे वाले होते हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी ये जो जो कॉर्पोरेट लेवल के जितने बड़े, यहां अमेरिका में ज्यादातर करप्शन आम लोगों में नहीं होता, ये सब आपको ज्यादा पता है। अमेरिकन सरकार के 30% टू 25% जो टैक्स है ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले चोरी करते हैं। जो घोटालेबाजी यहां बड़े बड़े स्तर पर होता है, मतलब साफ है जब आपके लिए चोरी करने में कोई बुराई नहीं है, आपके पास बिलियंस भी हो तो भी आप चोरी करने में नहीं हिचकिचाएंगे। पर अगर आपका माइंडसेट है कि चोरी करना बुरी बात है, दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स अखबारों में न्यूज में आते हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी, भीख मांगने वाला व्यक्ति को अचानक रोड पर या कहीं से बाजार में उसको कोई बैग मिलता है जिसमें मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स या रुपए होते हैं, बस सोने की चीजें होती हैं, वो चुपचाप लेकर उसको पुलिस स्टेशन में जमा कर देते हैं। पर चोरी व्यक्ति इसीलिए नहीं करता है कि उसको जरूरत है, इसीलिए कि उसका माइंडसेट है चोरी करना एक नॉर्मल बात है। ये जो माइंडसेट है, ये जो मानसिक अवस्था है, ये हमारे व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को डिसाइड करता है, निर्णय करता है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। आप और मैं जैसा भी है, इट्स बिकॉज ऑफ आवर ओन माइंडसेट। इसीलिए रिचुअल्स में मन का बड़ा जोर है कि मैं मानूं कि मैं पवित्र हूं। If you think that you are really pure. अगर आप सोचते हो कि आप प्योर हो तो आप प्योर हो, अगर आप सचमुच सोचते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा हो रहा हूं तो आप अच्छे हो रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे हॉस्पिटल में बड़े बड़े जो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मेंटली तैयार ना हो कि मैं ठीक हूं। जब आपकी जिजीविषा, जीने की इच्छा, विल पावर स्ट्रांग ना हो तो कि बड़े से बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। रिचुअल्स में, यज्ञों में, पूजा पाठ में, संध्या में यही यही लॉजिक काम करता है कि जब आप करें इस भावना के साथ करें कि मेरा अंदर शुद्ध हो रहा है, फीलिंग दैट प्यूरिटी। तो आचमन और अंग स्पर्श से शरीर और मन की शुद्धता होती है। होती है मतलब हम उसके प्रति कन्विक्शन बनाते हैं, हम अपने मन को उसी तरह के बनाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी कुछ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, आचमन करते हैं, गले में कुछ लगा हो, साफ हो जाए वगैरह वगैरह। हम लोग बड़े, मतलब हम लोग बोले दुनिया के ज्यादातर लोग जो रिलीजियस रिचुअल्स के प्रति बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, और इसका खामियाजा कि पंडित लोगों को बहुत भोगना पड़ता है। आप किसी के घर में हवन करने जाओ या किसी करे करो, पंडित जी से ज्यादा ज्ञानी उनके घर की महिलाएं होती हैं। दूसरे पंडित जी आए थे, उन्होंने तो ऐसा मंत्र बोला था, आप वो वाला मंत्र तो आज बोले नहीं। दूसरे पंडित जी ने पानी ऊपर ऐसे छिड़का था, आपने नीचे ऐसे छिड़का दिया। हमारे जो पहले वाले पंडित जी थे वो यज्ञ के बाद आरती मंत्र बोलते थे, आपने तो बोला नहीं, हमारी शादी तो अटक जाएगी। दूसरे पंडित जी थे वो यज्ञ के बाद यज्ञ रूप बोलते थे, आपने बोला नहीं, हमारे घर में तो भूत घुस जाएंगे। तो स्वामी जी कहते हैं रिचुअल्स पर रिजिडिटी बहुत नॉनसेंस चीज है, वो फ्लेक्सिबल है, उसके पीछे कारण है। इसको ट्रेडिशन बनाओगे, उसको अगर कस्टम बनाओगे, तुम्हारा ही नुकसान होगा। जैसे पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई, और ज्यादातर ट्रेडिशन ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं है, और पहला पंडित जी अगर सही आ गया तो सही जानकारी गई, अगर कोई अनपढ़ पंडित जी आ गया उसके बाद पढ़ा लिखा पंडित आए तो भी वो अनपढ़ होगा, क्योंकि पहले वाले पंडित जी ने तो ऐसा ही करा था, आपको तो कुछ आता नहीं है। ये बड़ी मुश्किल होती है। अब ये सी नहीं कि हमारे यहां सब जगह होता है, किसी के घर में उनके पिताजी के जब श्राद्ध होता था, वर्षी होती थी, जो घर में आप करते हैं वर्षी हवन, तो उनके घर में बिल्ली थी। पहले भी मैंने ये कहानी सुनाई है। तो स्वामी जी ये कहानी कोट करते हैं कि कैसे लोग धर्म के नाम पर लोग ज्यादा रिजिडिटी करने लगते रिचुअल्स के साथ, और धीरे धीरे उसको उसको बड़ा उसके बिना वो हिलते डुलते नहीं है। और उनके घर में एक बिल्ली थी, और वो हमेशा जब पूजा के सामान के वहां आ जाती थी, मुंह लगा देती थी, झूठा कर देती थी, तो पंडित जी नाराज होते थे। तो पिताजी ने क्या करते थे कि जिस दिन घर में वर्षी हो, घर में और तो कोई वो पूजा करते नहीं थे, वो वर्षी के दिन पिता के जिस दिन मृत्यु दिन होता है वो श्राद्ध दिन, उस दिन वो करते थे घर में। अब जैसे तैयारी होती थी, वो एक टोकरी ला करके बिल्ली को, बिल्ली के ऊपर उसको ढक देते थे। कुछ दिनों के बाद पिताजी गुजर गए, बिल्ली भी मर गई, घर में दूसरी बिल्ली लाए नहीं। अब बेटे का काम है कि अपने पिताजी के मृत्यु में उसको श्राद्ध करना होता है। तो श्राद्ध का दिन आया, पूजा पाठ की तैयारी शुरू हुई, तो उसने बोला एक बिल्ली कहीं से ढूंढो और एक टोकरी। क्यों? अब वो उस दिन पंडित जी भी दूसरे थे। पंडित जी ने बोला ये क्यों ना, फिर आप कैसा पंडित हो, आपको इतना भी पता नहीं कि श्राद्ध में बिल्ली को टोकरी से ढकते? ये तो मुझे पता नहीं, बकवास पंडित है ये, मेरे पिताजी को फिर शांति ही नहीं मिलेगी। बिल्ली ढूंढवाई गई, किराए पर बिल्ली लाई गई, टोकरी लाया गया, उसको ढका गया, फिर काम हुआ। हमारे ज्यादातर ट्रेडिशंस इसी तरह, उनके पीछे कुछ लॉजिक होता है। जो भी हम रिचुअल्स करते हैं वो किसी कारण से किया जाता है। जैसे स्वामी जी कहते हैं आप पानी गले में आचमन करते हो गला साफ करने के लिए, आपका गला साफ है तो आचमन मत करो। ये जरूरी नहीं कि हर यज्ञ में आप आचमन करें, जरूरी नहीं कि आप वो करें, ये फ्लेक्सिबल है। पर हमारा क्या है ना, हमें विचारों से कोई लेन देना नहीं, लेना देना नहीं है, हमें अपने आप को बदलने से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने मन को अच्छा बनाने में कोई लेना देना नहीं है। बस जो पहले से होता आ रहा है वो सब होना चाहिए, नहीं तो कुछ अशुभ ना हो जाए। तो स्वामी जी लिखते हैं, दिस मे बी ओमिटेड इफ देयर बी नो ड्रॉजीनेस और इफ नो वाटर इज अवेलेबल, अगर कहीं पानी है नहीं तो मत करो आचमन। जैसे आप सृष्टिकृत में हलवा बनाते हैं, ये भी एक ट्रेडिशन बन गया है। स्वामी जी ने लिखा कुछ भी पका हुआ अन्न दे देना, घर में जो पका हुआ हो, चावल हो, कुछ भी हो। अब लोगों को लगा भाई यज्ञ के बाद थोड़ा प्रसाद भी होना चाहिए, चावल दाल कौन खाता है, तो हलवा कुछ लोगों ने बनाया। अब अगर आपने किसी को कह दिया हलवा नहीं आप चावल बना दो, ये कौन सा मॉडर्न पंडित आ गया, हलवा के बिना हवन होता है? अच्छा हलवा नहीं बना आज घी की आहुति दे दो, ये कौन सी बात हो गई? तो रिचुअल्स सारे मन से जुड़े होते हैं। अगर किसी दिन आपके पास आप पानी नहीं है, आपके पास घी नहीं है, आपके पास सामग्री नहीं, तो भी आप हवन कर सकते हैं। तो हमारे आरण्यक उपनिषद में आता है, कहते हैं घी से आहुति दो, बोले घी ना हो, तो बोले पानी से आहुति दो, बोले पानी ना हो, बोले मन से आहुति दो। पर हमारे लिए मंजूर नहीं है, क्योंकि हम उन चीजों को समझते नहीं है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगला है नाउ द ब्रीदिंग एक्सरसाइज अकम्पेंड बाय द रिसाइटेशन ऑफ द मंत्र देन मेंटल पेरम्बुलेशन देन कम्युनियन। ये जो संध्या लो आप लोग करते हैं उसकी एक प्रक्रिया है। आज भी जैसे हमारी संध्या थी, अचमन है, अंगस्पर्श है, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, स्तुति का मतलब ईश्वर का गुणगान करना, वो हम बाद में किसी दिन और दिन चर्चा करेंगे। पहले जमाने में जो पूजा वो जो संध्या होती थी वे खास जगह पर होती थी। अब वो क्या था, अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयत गत्वारण्यम समाहितः। पहले जो गांव या शहर होते थे वो जंगल के आसपास होते थे। अब ये कहना गलत है कि जंगल के आसपास, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल होता था, जहां गांव उसके पड़ोस में जंगल। आजकल क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन इतने बढ़ चुके हैं, इंसानी आवास इतने बढ़ चुके हैं, अब जंगल खत्म हो चुके हैं और पानी की जो जो रिजर्वर है, जो टैंक है, वो हर जगह हुआ करते थे। तो संध्या उपासना या ध्यान के लिए ज्यादातर लोग अपने घर से बाहर, गांव से बाहर, शहर से बाहर अकेले में चले जाते थे, किसी नदी के किनारे बैठ जाते थे, तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, अकेले में नेचर के साथ बैठ करके उपासनाएं करते थे। जैसे आप लोग प्राणायाम करते होंगे घर में। प्राणायाम आप क्यों करते हैं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा अंदर ऑक्सीजन, अगर आप थेरेपी के लिए, ज्यादातर आजकल तो थेरेपी के लिए प्राणायाम करते हैं, कम से कम इसीलिए कि आप करते हैं कि आप प्योर ऑक्सीजन ले सकें। अगर आपके घर के चारे दरवाजा बंद है, अपने एसी चला रखा है, तो उस प्राणायाम का क्या फायदा है? तो जब भी आप आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, कोशिश करें, घर में भी करें तो एसी बंद करके दरवाजा खोलें, गर्मी लग रही है तो लगने दें, ठंड लग रहा है तो लगने दें, आप उस नेचुरल जो विंड है, जो जो प्राकृतिक वायु है, उसको अंदर लेने की कोशिश करें कभी। और वो जो फ्यूजन हम करते हैं वो टेस्ट के लिए तो अच्छा होता है, पर सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। किसी भी चीज का जो फ्यूजन है, ये टेस्ट तो अच्छा लगता है कभी कभी, या शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। फ्यूजन क्या, मैं प्राणायाम करना है पर एसी वाले रूम में। क्लासिकल गाना गाना है जैज म्यूजिक के साथ, ओके, ये टेस्ट के लिए होता है, इसका आप बॉडी पर कोई असर नहीं होता है, आप कर सकते हैं ये फ्यूजन। तो प्राणायाम इसीलिए प्राचीन काल में हमेशा, आज आज का वो समय नहीं रहा कि आप जंगल में जाकर के साधन पूजा पाठ करें, ये मौका नहीं है, पर खुले में करने की कोशिश करें। घर में भी अगर करते हैं तो खिड़की दरवाजा खोल के रखें जब आप आसन करें, प्राणायाम करें। और दूसरी बात होती है, ईश्वर से संबंधित कोई भी आप काम करें, भक्ति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान, अकेले में करें, एकांत में होना बड़ा जरूरी है। पब्लिक में जब हम करते हैं सीखने के लिए तो ठीक है, ट्रेनिंग के लिए या सोशलाइजेशन के लिए, पर जब आप सचमुच ईश्वर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें तो अकेले में करें। मैं क्या प्रार्थना करता हूं, कैसे करता हूं, ये मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को भी पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका उसके साथ अपना डायरेक्ट रिलेशन है। क्या कभी ऐसा होता है, खैर यहां तो वो भी होता है, वो भी होता है कि पति पत्नी प्यार करे और कहे कि भाई हम आज बाजार में प्यार करेंगे, पब्लिक को तो पता चले कि हम प्यार करते हैं। क्या बाप मां बाप अपने बच्चों को कहते हैं चलो भाई बाहर रोड पर जरा गले मिलेंगे? पर हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपने जिन लोगों से प्यार करते हैं उनको तो हम पर्सनल रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं, पर ज्यादातर लोग ईश्वर से जो रिलेशन बनाते हैं वो पब्लिक में करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसका फायदा है, वो फायदा है कि पब्लिक को पता चले कि भाई मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, हम अंदर से उतने ही फ्रस्ट्रेटेड, उतने ही डिप्रेशन में डूबा हुआ होते हैं, जबकि हम जिंदगी भर भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर एक नास्तिक आदमी में जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर भक्ति नहीं करता, उसके कंपैरिजन मेरे अंदर कोई ज्यादा कोई बड़ा सुख या खुशी या कुछ नहीं होता, सिवाय पब्लिक को पता लगने की कि ये बड़ा ईश्वर भक्त है, और मेरे अंदर उतना ही खोखलापन है जितना कोई ईश्वर को गाली देने वाले में है। क्यों? क्योंकि मैं सचमुच ईश्वर से अगर प्यार करूं तो प्यार को पब्लिक करने के लिए, पब्लिक में दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो मेरा उतना ही प्राइवेट मामला है जितना पति पत्नी की प्यार की मामला है, जितना पेरेंट्स और बच्चों की मामला है, जितना एक दोस्त और दोस्त का मामला है। हर चीज को प्राइवेट पब्लिक में लेने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी पब्लिक में होता है, इसी तरह हम मंदिरों में जाते हैं तो ठीक है, वहां पब्लिक में हम पूजा पाठ करते हैं, पर जो मेरा रेगुलर पूजा पाठ है, जो रेगुलर ईश्वर से मेरा जो संबंध है, वो हमेशा प्राइवेट में होना चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है कि आपकी जो पूजा पाठ, जो भावनाएं हैं, वो एकांत में होना बड़ा बड़ा जरूरी है। मेरे ख्याल से समय हो चुका है, आगे जो हम अगले बार चर्चा करेंगे, देव यज्ञ, जो पांच यज्ञ हमारे जीवन में हैं, हर व्यक्ति को करना चाहिए, उसकी चर्चा हम करेंगे। ब्रह्म यज्ञ, जैसे आपने सुना, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, जिसमें संध्या, उपासना, भक्ति, प्रार्थना वगैरह। देव यज्ञ, नेचर के साथ अपने आप को जोड़ने की जो प्रक्रिया है। पितृयज्ञ, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए जो जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसको पितृयज्ञ कहते हैं। भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, संसार में हर प्राणी, हर मनुष्य के साथ मेरा एक रिलेशन है, अगर डॉक्टर नहीं होता तो मेरा इलाज नहीं होता, किसान नहीं होता तो मुझे अनाज नहीं मिलता, वो दुकानदार नहीं होता तो मुझे सामान नहीं मिलता, वो ड्राइवर नहीं होता, तो हरेक का एग्जिस्टेंस, हरेक का अस्तित्व मेरे जीवन में जरूरी है, और उनको रिकॉग्नाइज करना और उनके लिए भी कुछ करना, ये मनुष्य यज्ञ है। और भूत यज्ञ, मनुष्य के अलावा जो प्राणी और बच गए, वो कीड़ा मकोड़ा से लेकर बड़े बड़े हाथी घोड़े तक जितने भी प्राणी हैं, उनका भी मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उनके लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य है। ये जो पांच यज्ञ है, इसको ऋषि ने, हमारे शास्त्रकारों ने यज्ञ का नाम दिया, उसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। समय यही हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना, आभार।